शांति, ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। 99 की मुरलियां आरंभ हो चुकी है और ये मुरली है होली के अवसर की। पहली मार्च 1999, तो होली का बाबा ने बहुत सुंदर अर्थ बताया है। तो तुम बच्चे कौन हो, पहले तो नशा चढ़ाया है। तुम होलीएस्ट भी हो और हाईएस्ट भी हो। तो होलीएस्ट किस रूप में, हाईएस्ट किस रूप में हो, वो बाबा ने स्पष्ट किया है। साथ साथ बच्चों की महिमा करते हुए बच्चों को बहुत उमंग भरने लिए शक्ति भी भरी है। तो सुनते हैं बाबा के माँ वाक्य, काफी लंबी मुरली है। आज 7/4/2024 है और यह मुरली अव्यक्त बाप दादा की 1/3/99 की सुनेंगे। संपूर्ण पवित्र बनकर, होली है ना, तो संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, यही सच्ची होली है। होली का सच्चा अर्थ क्या है? संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना। खाली नाचना नहीं, पर संस्कार मिलन मनाना, संपूर्ण पवित्र बनकर, यही सच्ची होली है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं और हम भी उसी दृष्टि से बाबा को देख रहे हैं कि बाबा हमें कितना होलीएस्ट और हाईएस्ट बना रहे हैं। तो आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट, हाईएस्ट माना ऊंचे ते ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है? बाबा कई बार कहते हैं, घूम के आओ कहीं कहीं भी, सारे विश्व का चक्कर लगाओ, सारे चक्र में चक्र लगाओ, कोई ऐसा है जो सबसे हाईएस्ट ऊंचे ते ऊंचे श्रेष्ठ आत्मा आप बच्चों के सिवाय कोई हो? क्योंकि आप सभी ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। सारे कल्प में चक्र लगाकर देखो तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं? दुनिया में तो कितने बड़े बड़े मर्तबों वाले हैं, लेकिन बाबा के लिए तो सबसे बड़े मर्तबे वाले तो हम बच्चे हैं। राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी कोई बने हैं? राजा, सबसे ऊंचे राजा, सत्युग के राजा, इनसे और कोई ऊंचे हो ही नहीं सकते। राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी कोई बने हैं? फिर पूजन और गायन में देखो, जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है उससे ज्यादा और किसी की है? कितनी पूजा करते हैं तो और किसी की इतनी पूजा भी नहीं, गायन भी नहीं। वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है जो आप, और क्या वंडरफुल राज है इसमें कि आप स्वयं चैतन्य रूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो कि जिनकी पूजा हो रही है वो हमारा ही पूज्य स्वरूप है, उनको जानते भी हो और देखते भी हो, प्रैक्टिकल में हम भी है चेतन में और हम अपने पूज्य स्वरूप और गायन योग्य स्वरूप को देखते भी हैं और हाँ जानते भी हैं। एक तरफ आप चैतन्य आत्मा ही हो और दूसरी तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में हैं, अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना, कैसी पूजा होती है तो आप अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना, जड़ रूप में भी हो और चैतन्य रूप में भी हो तो वंडरफुल खेल है ना। और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न कैसा होगा हमारा राज्य, सारे कल्प में और राज्य के हिसाब में सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अटल राज्य एक आप आत्माओं का ही चलता है। राजे तो बहुत बनते हैं लेकिन आप विश्व राजन व विश्व राजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ हैं। तो राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट और अभी संगम पर परमात्म वर्षे के अधिकारी, परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म परिवार की आत्माएं और कोई बनती है? सबके अधिकारी, किस किस के अधिकारी? परमात्म वर्षे के अधिकारी, परमात्मा मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म परिवार की आत्माएं और कोई बनती है? आप ही बने हो ना, बन गए हो या बन रहे हो, बन भी गए हैं और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर में भी चलने वाले हैं। बन गए, ऐसे नहीं कि बन रहे हैं, बन गए हैं, तो बन भी गए हैं और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर में भी चलने वाले हैं। संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना। बाबा कई बार पूछते हैं सतयुग में जाना पसंद करोगे या संगम का ये सुख पसंद है, तो बच्चे क्या कहते हैं, संगम का तो बहुत पसंद है, ये नहीं कि बाबा जल्दी ले जाओ। तो संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना, बहुत प्यारा लगता है। राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना। प्यार है या जल्दी जाना चाहते हो? जो समझते हैं जल्दी जाना है हाथ उठाओ भाई, देखो कोई हाथ नहीं उठाएगा। ये संगम का ऐसा प्यारा समय है बाप के साथ, तो कौन जाना चाहेगा? फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा? आज से पूछना बंद, विनाश कब होगा, संगम युग का सुख अनुभव करो। फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा? सोचते हो ना, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा। हाँ, उस समय तो बहुत ज्यादा सोच चल रहा था क्योंकि दुनिया वाले भी कहते थे 2000 में सारे कंप्यूटर्स क्रैश हो जाएंगे, ये सब होगा, वो होगा, वो होगा, पता नहीं क्या क्या कहते थे, तो बहुत डर था। तो इसलिए बाबा कहते तो आप क्या चाहते हो, पता नहीं विनाश कब होगा, सोचते हो ना क्या होगा, फिर हम कहाँ होंगे, अगर विनाश होगा तो हम कहाँ होंगे। बाप दादा कहते हैं एक ही जवाब कि जहां भी होंगे, अगर होता भी है विनाश, जहां भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे। क्यों सोचते हो? हाँ, दादी जानकी को बाबा ने यही कहा ना, दादी जानकी को जब पहली बार विदेश यात्रा पर जा रही थी 74 में, एकदम नया, भाषा नहीं जानती, कुछ नहीं, लेकिन बाबा ने कहा तुमको जाना है। तो दादी ने कई बातें कही, बाबा मैं भाषा नहीं जानती हूँ। बाबा के कोई बात नहीं, वहाँ बहुत इंटरप्रेटर मिल जाएंगे हिंदी से अनुवाद करने वाले। फिर कहा बाबा मधुबन में जो बाबा का कमरा मिलता है वो हमको वहाँ कहाँ मिलेगा। बाबा ने कहा तुम वहाँ बना लेना, मधुबन कहाँ मिलेगा, मधुबन बना लेना। बाबा ने उनके कोई भी तर्क को ये स्वीकार नहीं किया, बना लेना। तो इसीलिए देखो बाबा क्या कहते हैं, जहां भी होंगे याद में होंगे ना, बाप के साथ होंगे, साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। कहां भी होंगे बाबा के साथ होंगे। मुझे भी अपना अनुभव है, जब सबसे पहली बार 74 में हम अफ्रीका जा रहे थे तो अव्यक्त बाप दादा से बात हुई, पर्सनल मिलते थे, और 76 में विनाश होगा विनाश होगा, ये भी अफवाहें थी। तो बाबा को हमने कहा बाबा आप हमको विदेश भेज रहे हो और अगर विनाश हो गया तो, हाँ डर लगा हमें कि कहाँ भेज रहे हो, एकदम नया स्थान, कुछ भी नहीं जानते। तो बाबा मुस्कुराए, बड़ा बचपना प्रश्न था, बाबा मुस्कुराए और बहुत सुंदर जवाब दिया। बाबा ने प्रश्न के रूप में ही कहा, बाबा ने कहा कौन भेज रहा है, तो मैंने कहा बाबा आप भेज रहे हो। तो बाबा के बाबा ने कहा बाबा भेज रहा है तो आपको चिंता क्यों, सबसे बड़ी बात, आपको चिंता क्यों, जो भेज रहा है उसको चिंता होनी चाहिए ना कि विनाश हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा, आपको चिंता क्यों। बस उस सेकंड से संकल्प खत्म कि बाबा, हाँ जहां भी हम बाबा के साथ हैं। तो बाबा कहते हैं सोचते हो ना पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे। बाप दादा कहते जहां भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे, साकार या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। बाबा के साथ है कुछ नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई है ना, कौन सी सुनाई या कौन सी कहानी है आपको याद होगा ना, कि उस समय बाबा जहाँ रहते थे लखीराज का स्थान था, तो लाखा भवन भी कहते थे, महाभारत में भी लाखा भवन का वर्णन है। तो कौरवों ने जला दिया तो लाखा भवन तो जल गया, वो तो लाखा का था, माना वैक्स होता है ना, मोम उसका था, तो वो तो जल गया सब कुछ, पर पांडव तो वहां थे नहीं, लेकिन बिल्ली के पुंगरे थे, सब जल गया लेकिन वो बिल्ली के पुंगरे बच गए, वो बिल्ली ने बच्चे दिए थे तो वो बच गए, बाकी सब खत्म हो गया। पर पांडव तो पहले से निकल आए थे, और हैदराबाद में भी ऐसा हुआ था तो आग लगाने की कोशिश की, तो बच्चे जो थे स्कूल बोर्डिंग स्कूल में थे, अब बच्चे तो सुबह सुबह अब सैर करने जाते थे तो पीछे से कैसे आग लगा दी, अब बच्चे तो थे नहीं, तो फिर तो आग तो बुझा दी, लेकिन फिर पिकेटिंग की, बच्चों को वापस नहीं आने दिया, बहुत कुछ हुआ। तो आग की बात है, तो बाबा कहते हैं बिल्ली के पुंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे ना, या जल गए, जब सब सेफ रहे तो आप परमात्म बच्चे जो साथ होंगे वो सेफ रहेंगे। शरीर से साथ नहीं, कहीं भी होंगे पर बाबा की याद में है तो सेफ रहेंगे। अगर और कहां बुद्धि होगी तो कुछ न कुछ सेक लगेगा, कुछ न कुछ प्रभाव होगा, साथ में कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। कभी कभी काम काज या सेवा में अकेला अकेले अनुभव करते हो, बाबा ने बच्चों से पूछा, क्या क्या करें, अकेले हैं, बहुत काम है, फिर थक भी जाते हैं, तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते हो। कंप्लेन तो करते ना, मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई साथी नहीं है, अकेली क्या करूंगी, यहाँ बोर हो जाती हूँ, कोई साथी चाहिए। तो बाबा कहते हैं अकेले हो जाते हो फिर थक भी जाते हो, तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते हो। दो भुजा वालों को साथी बना देते हो, हजार भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते हो। कौन ज्यादा सहयोग देगा, दो भुजा वाला या हजार भुजा वाला कौन ज्यादा सहयोग देगा। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते अकेले। सिर्फ जब सेवा में कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथ भी भूल जाते हो और फिर थक भी जाते हो, फिर सोचते हैं मैं अकेली हूं, अकेला हूं, अकेला, वो सोच में ही थक जाते हैं और फिर थक जाते हो, फिर कहते हो थक गए अभी क्या करें। थको नहीं, जब बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए आए हैं, परम धाम छोड़कर क्यों आए हैं। सोते जागते कर्म करते सेवा करते साथ देने के लिए ही तो आए हैं। ब्रह्मा बाप ही आप सबको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने, व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है। व्यक्त में तो जहां है अभी कहां सहयोग दे सकेंगे, पर अव्यक्त रूप में तो बाबा को याद करो और बाबा साथ है, बहुत तीव्र है। इसीलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर दिया, साकार वतन से अव्यक्त वतन वासी बने, क्योंकि बच्चों को साथ देना है। तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर हैं। आपने सोचा और बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे, बाबा सोचा और सहयोग और अनुभव करेंगे। अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है, बाप को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो, तो बाप फिर क्या करते हैं? खुद ही सेवा करते हो, बाबा को तो साथ में रखते नहीं हो, और तो सेवा सेवाई में ही बिजी रहते हो, तो बाप क्या करते हैं? फिर बाप भी साक्षी होकर देखते हैं, ठीक है करने दो, बाबा को याद तो कर ही नहीं रहा है, तो बाप भी साक्षी होकर देखते हैं, देखिए कहाँ तक अकेले करते हैं। कई बार होता है ना, कुछ भी कर रहे हैं, अब वो जो हमारे साथी है वो हमको देख रहे हैं या कर रहे हैं, अकेले करने दो करने दो, लेकिन फिर देखते हैं कि हम नहीं कर पा रहे, तो सहयोग जरूर देते हैं, हम उनको कहेंगे भाई सहयोग दो। तो साक्षी होकर देखते हैं, देखिए कहाँ तक अकेले करते हैं, फिर भी आने तो यहाँ ही है, फिर भी आने तो यहाँ ही है बाबा के पास ही, तो साथ नहीं छोड़ो। अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो बाबा को, बाबा को छोड़ो नहीं। कैसे बांध के रखो? अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो, बाबा आ जाओ तो देखो बाबा बंधा हुआ है आने के लिए। ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो, तो ऐसे नहीं करना। अधिकार से बाबा को याद करो, बाबा को बुलाओ, तो बाबा कहते ऐसे नहीं करना। तो जब जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है, तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं, अच्छा देखें कहाँ तक अकेले करते हैं। तो संगम युग के सुख और सुहेजों को इमर्ज करो। संगम युग पर कितना सुख बाबा ने दिया है, कितना भाग्य दिया है, वो इमर्ज करो, इमर्ज रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। संगम युग के मौजों को भूल जाते हो, बिजी रहती है बुद्धि। आप सोचो सारे दिन में किसी से भी पूछें कि बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है। सारे दिन में कभी भी किससे पूछे कि बाबा याद है या बाबा भूला हुआ है, स्थिति क्या होती है? तो बाबा तो क्या कहेंगे जब किसी से पूछते हैं बाबा याद है या बाबा भूला हुआ है, तो क्या कहते हैं? नहीं, बाबा तो सदा याद है, ये तो राइट है कि याद रहता है, कोई नहीं कहेगा नहीं मैं बाबा को भूल गया, ये कहेंगे नहीं बाबा तो याद है, तो बाबा के ये तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रहता है? इमर्ज रूप में बाबा याद रहे, साथ है, ये इमर्ज रहे, ये बार बार भान रहे मैं अकेली नहीं हूं, अकेला नहीं हूं, बाबा साथ है, तो ये इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज, हाँ बाबा साथ है। स्थिति क्या होती है, इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति, अंदर में समाई हुई या सचमुच महसूस होता है कि बाबा साथ है, इसमें क्या अंतर है, इमर्ज और मर्ज में क्या अंतर है? इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते? अंतर तो समझ गए ना, बाबा साथ है तो कभी डर नहीं लगेगा, बाबा साथ है तो कभी ये नहीं सोचेंगे पता नहीं आप कर सकेंगे नहीं सकेंगे, तो ये सब बातें अगर डाउट्स आते हैं तो इसका मतलब बाबा को साथ नहीं रखा है। तो बाबा कहते इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते, इमर्ज रूप का नशा, नशा होगा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकते क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है, जन्म जन्म का नाता है, चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होंगे लेकिन नाता तो यही रहेगा ना, शिव बाबा हमारा पिता है, पारलौकिक पिता, ये तो सारे कल्प का ही नाता है ना, ऐसे थोड़ी कि सतयुग त्रेता में शिव बाबा हमारा बाप नहीं है, भले हमें याद नहीं है पता नहीं है लेकिन है तो सही ना बाप। तो बाबा कहते चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा लेकिन नाता तो यही रहेगा ना, भूल तो नहीं सकता है, ये राइट है, बाबा आपको भूल नहीं सकते, ये राइट है, हाँ कोई विघ्न के वश हो जाते हो तो भूल भी जाता है, हाय क्या हो गया, हाय ये क्यों हुआ, बाबा भूल गया उस समय, तो कोई विघ्न के वश हो जाते हो तो भूल भी जाता है, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है, लेकिन मर्ज रहता है, इमर्ज नहीं रहता, इमर्ज रहे तो नशा खुशी रहे, कोई कंप्लेंट्स ना हो, कंप्लेन भी करते रहेंगे फिर कहेंगे बाबा तो साथ है पर कंप्लेन फिर क्यों, तो भूलता नहीं है लेकिन मर्ज रहता है, इसीलिए बाप दादा कहते हैं बार बार चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में है, प्यार तो है ही, प्यार टूट सकता है, टूट सकता है हमारा प्यार बाबा से, नहीं वो टूट तो सकता नहीं, नहीं टूट सकता है ना, तो प्यार जब टूट नहीं सकता तो प्यार का फायदा तो उठाओ, बाबा से प्यार है हर वक्त बाबा की याद क्यों नहीं है, वो प्यार का फायदा तो उठाओ, फायदा उठाने का तरीका सीखो, कैसे फायदा उठाया जाता है बाबा से, बाप दादा देखते हैं प्यार नहीं तो बाप का बनाया, प्यार ही मधुबन निवासी बनाता है, मधुबन में आते हैं तो मधुबन निवासी है तो ये प्यार नहीं बनाया, मधुबन में आए चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहें, कितनी भी मेहनत करें, लेकिन फिर भी मधुबन में पहुंच जाते हैं, बाप दादा जानते हैं देखते हैं कई बच्चों को कलयुगी सर्कमस्टांस होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल है, ये बाबा उस समय मुझे लगता है जो मुरली अनुसार ऐसे लगता है कि वो ओम शांति भवन में मुरली चली थी और बहुत विदेशी आ गए थे, तो मधुबन वालों को कहा था आप सब नीचे बैठो, नीचे बैठे थे मेडिटेशन हॉल में और नीचे मुरली सुनी और यहाँ पार्टी वाले और डबल विदेशियों को बिठाया था, तो नीचे भी कई थे तो कहा मधु मेडिटेशन हॉल में भी बैठे, बाबा कह रहे हैं, तो बाबा कहते हैं चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहे कितनी भी मेहनत करे लेकिन फिर भी मधुबन में पहुंच जाते हो, हाँ मुझे याद है एक बार गयाना से एक बहन आई थी, मधुबन आई थी और काफी गरीब थी, मतलब कोई इतना गयाना माना कितना दूर, तो धन भी नहीं था, तो मैंने कहा आप कैसे आ गई, क्योंकि जब छुट्टी ले रही थी जब मिली तो मैंने कहा आप आ गई, तो कैसे आई, क्योंकि पिछले साल आई थी तो किसी से लिया था, फिर साल आ गई तो मैंने कहा आप कैसे आई आपने, तो कहा क्योंकि जाते समय वो कहने लगी, रोने लगी, पता नहीं मैं दोबारा आ सकूंगी या नहीं आ सकूंगी, पता नहीं। तो क्योंकि कहती मैंने अपनी कार बेची, मेरा एक घर था वो बेचा, वो दोनों बेच के मैंने टिकट ली यहां आने के लिए, अब अगली बार आ सकूंगी या नहीं आ सकूंगी। फिर अगली बार देखा आ गई, मैंने कहा कैसे आ गई, तो कहा कि बाबा ने मदद किया, कैसे हमको बाप का वर्षा मिला, आ गई। तो देखो बाबा कैसे मदद करता है। तो बाबा कहते हैं प्यार में पहुंच जाते हैं, लेकिन सर्कमस्टांस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, परिस्थितियां तो विकराल होती जा रही है। अभी भी कितने विदेशी आए, कहा कि हमारी टिकट तो डबल हो गई इतनी, क्योंकि कोरोना के बाद ये टिकटें तो बहुत महंगी हो गई। तो बाबा कहते हैं लेकिन सर्कमस्टांस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं, सच्ची दिल पर साहिब राजी तो होता ही है, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहां न कहां कैसे भी मिल जाता है, चाहे डबल फॉरेनर्स हो चाहे भारतवासी हो, सबको ये बाप का प्यार सर्कमस्टांस की दीवार पार करा लेता है। वो परिस्थितियां जो आती है वो दीवार पार करा लेता है और बाबा के बच्चे मधुबन में पहुंच जाते हैं। ऐसे है ना, अपने अपने सेंटर्स पर देखो तो ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ से जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं दूसरे वर्ष आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, लेकिन फिर भी पहुंच जाते हैं। ये है प्यार का सबूत, प्यार का सबूत, जो मधुबन आ जाते हैं कैसे भी करके। अच्छा, तो फिर होली मनाई होगी, तो आज होली मनाई, मना ली होली, बाप दादा तो होली मनाने वाले होली हंसों को देख रहे हैं। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, होलीएस्ट, होलीएस्ट, हाँ, सबसे पवित्र। द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया है, स्वयं बनते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलीएस्ट, पवित्र नहीं बनाते। और यहां यहां पवित्रता तो ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है, बाबा यही कहते हैं पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, तो सुख शांति का आधार ही पवित्रता है। तो ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है, पढ़ाई भी क्या है, आपका स्लोगन भी है ना, पवित्र बनो योगी बनो, सबसे पहला स्लोगन बाबा ने यही दिया शुरू में, पवित्र बनो योगी बनो, ये स्लोगन है ना। पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट या नेगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, है बिल्कुल। नेगेटिव विचार किसी के प्रति भी चले या व्यर्थ विचार भी चले तो बाबा कहते हैं योग उस समय है नहीं, उस समय वो योगी नहीं है, वो वियोगी बन जाता है। तो बाबा कहते हैं तो कि अपवित्रता अर्थात वेस्ट या नेगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं तो कितना भी योग पावरफुल चाहते लेकिन होता नहीं, क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है, किसके प्रति भी नेगेटिव व्यर्थ विचार है या पवित्रता है, तो जहां अपवित्रता का अंश है वहां पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसे नहीं आ सकती। बाबा जो है जैसा है वैसे उनकी याद उस रूप से नहीं आ सकती, क्योंकि मन में नेगेटिव और व्यर्थ विचार है। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता, इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं, संकल्प में भी नेगेटिव या व्यर्थ विचार न हो, क्योंकि वो भी अपवित्रता है। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे। साकार मुरलियों में बाबा का आता है, बच्चे अगर मन में तूफान आते हैं बाबा को याद करो, पर उस समय तूफान को भगाओ, मन में आते हैं पर कर्म में मत लाओ। लेकिन अभी तो बाबा कहते हैं मन में भी नहीं आना चाहिए, इतने हद तक पवित्रता हो। तो बाबा कहे सारा समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा, धोखा दे देगा। समझेंगे हमने सेवा तो बहुत की, कितनी सेवा कर रहा हूं और ये हमको क्यों नहीं आगे बढ़ाते, क्यों नहीं हमको सेवा करने देते, लेकिन उसके प्रति नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो बाबा कहते हैं सेवा का पुण्य भी नहीं बनता है, बनता है। आज बाबा ने खास इस पर जोर दिया, लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है। मनसा को हल्का नहीं करना, मनसा में थोड़ा नेगेटिव आ गया किसके प्रति तो कोई बात नहीं, कर्मणा में तो नहीं आया ना। बाबा कहते हैं मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि क्यों हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना ये भी अपने को धोखा देना है। मुझे ये तो मिल गया ना, ये तो मिल गया ना, ये अपने आप को धोखा देना, ये क्यों नहीं मिला, ये क्यों नहीं मिला, फिर वो विचार आता है जितना भी मिले कहेंगे ये क्यों नहीं मिला। तो बाबा कहते हैं ये इससे जैसे अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो बाबा कहे बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना ये भी अपने को धोखा देना है। बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ खुश समझ धोखा दे देते हैं, खुद को धोखा देते हैं। दे भी रहे हैं, दे देते हैं और दे भी रहे हैं, ये भी एक गुह्य राज है। आज बाबा राज खोल रहे हैं, क्या होता है, बाप तो दाता है, दाता के बच्चे हो तो सेवा युक्ति युक्त नहीं भी की, सेवा युक्ति युक्त नहीं भी की मिक्स है, कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों व खुशी के आधार पर है, दिल के आधार पर नहीं। बाहर के साधनों और सेवा और कुछ भी बाहर की बातों से खुश है, दिल के आधार पर नहीं सेवा है, लेकिन दिमाग पे के आधार पर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उनको भी मिलता है। केवल दिमाग से सेवा करते हैं, दिल से नहीं, क्योंकि बाप दाता है तो वो तो फल देगा और वो उसी में खुश रहते हैं कि वाह हमको तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है। हाँ, किसी कोई मेरी सेवा छीन नहीं सकता है, मैं ही कर सकता हूँ, चलो कर लो करो, तो मेरी तो बहुत अच्छी सेवा है। लेकिन वो मन की संतुष्टता सदा काल नहीं रहती और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती, उससे वंचित रह जाती है। बाकी कुछ भी नहीं मिलता ऐसे नहीं है, उस समय थोड़ा सेवा का फल मिलेगा प्रत्यक्ष, थोड़ी बहुत खुशी होगी, बाकी और बाबा कहते नहीं मिलता, कुछ न कुछ मिलता है लेकिन जमा नहीं होता है। जमा हुआ खाया, जमा हुआ खाया, वो और आगे जमा नहीं होता है, कमाया खाया और खत्म। इसलिए ये भी अटेंशन रखना, सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया तो खाया और खत्म, जमा क्या हुआ? अच्छी सेवा की, अच्छी रिजल्ट निकली, लेकिन वो सेवा का फल मिला पर जमा नहीं हुआ। इसलिए जमा करने की विधि क्या है? जबरदस्ती तो ले लिया, चलो उस समय किया, खुशी हुई या ना मैंने किया, पर जमा क्यों नहीं हुआ? तो जमा करने की विधि क्या है? मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता, ये है जमा करने की विधि। किसी के प्रति भी नेगेटिव व्यर्थ सोच नहीं, सहज बाबा कहते बनो। मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता, ये है जमा करने की विधि। फाउंडेशन पवित्रता है, सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है। स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता, भाव और भावना दोनों में भी पवित्रता। होली का अर्थ ही है पवित्रता। अपवित्र को जलाना, इसलिए पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, और फिर पवित्र बन संस्कार मिलन मनाते हैं। तो होली का अर्थ ही है जलाना और मनाना। बाहर वाले तो गले मिलते हैं, लेकिन यहाँ खाली गले मिलने की भी बात नहीं है, यहाँ संस्कार मिलन, यही मंगल मिलन है। अब उनके संस्कारों से अपने संस्कार मिलाना, मेरे संस्कार से उनके संस्कार मिल जाए, ये संस्कार मिलन यही मंगल मिलन है। तो ऐसी होली मनाई या सिर्फ डांस कर ली, गुलाब जल डाल दिया, वो भी अच्छा है, खूब मनाओ, बाबा मना नहीं करते हैं। यहाँ भी होली मनाते हैं ना, तो भी ऐसे करते हैं, गुलाबाशी में वो होली, ये रंग तो नहीं, वो रंग जो पक्के रंग है वो नहीं डालते हैं, लेकिन गुलाब जल और उसमें केसर तो वो मिलाते हैं ताकि थोड़ा कलर हो जाए, फिर वो धूप में तोड़ जाता है, लेकिन इससे तो मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं गुलाब जल डाल दिया, वो भी अच्छा है, खूब मनाओ। बाप दादा खुश होते हैं, गुलाब जल भल डालो, डांस भले करो, लेकिन सदा डांस करो। केवल उसी समय डांस किया, क्या बड़ी बात है, सदा डांस करो। कौन सी डांस? संस्कार मिलन की डांस। सिर्फ 5-10 मिनट की डांस नहीं, 1-2 में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, ये गुलाब जल डालना है। कौन सा गुलाब जल? 1-2 में गुणों का वाइब्रेशन डालना। गुलाब जल में सुगंध तो होती है ना, तो ये सुगंध डालो, ये गुलाब जल डालना। और जलाने, और जलाने को तो आप जानते ही हो क्या जलाना है, अभी तक भी जलाते रहते हो, हर वर्ष हाथ उठाकर जाते हो, बस दृढ़ संकल्प हो गया, हमारे पुराने संस्कार, ये संस्कार सब जल गए, ये दृढ़ संकल्प भी करके जा रहे हो। तो बाबा कहते हैं हर वर्ष हाथ उठाकर जाते हो, बस दृढ़ संकल्प हो गया। बाप दादा खुश होते हैं, हिम्मत तो रखते हो, तो हिम्मत पर बाप दादा मुबारक भी देते हैं। हिम्मत रखना भी पहला कदम है। हाँ बाबा ये सब जल गए मेरे, स्वाहा कर दिया, तो बाबा कहते हिम्मत रखना भी पहला कदम है, लेकिन बाप दादा की शुभ आश क्या है? समय की डेट नहीं देखो कब होगा विनाश, समय की डेट नहीं देखो, 2000 में होगा, 2001 में होगा, 2005 में होगा, ये नहीं सोचो। चलो एवर रेडी नहीं भी बनो, इसको भी बाप दादा छोड़ देते, 2001 में होगा तो मैं 2000 तक हो जाऊंगा एवर रेडी, तो बाबा कहते चलो वो एवर रेडी बनना ये भी बात छोड़ दो, लेकिन सोचो बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना, ऐसे थोड़ी अभी कल विनाश होकर आज आप एवर रेडी बनेंगे, बहुत काल के संस्कार चाहिए ना। आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल के राज्य अधिकारी बनाता है। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वो बहुत काल हुआ या अल्प काल हुआ, किसने गिनती होगी? अल्प काल में होगा ना, तो अविनाशी बाप से वर्षा क्या लिया? अल्पकाल का ये अच्छा लगता है, नहीं ना, तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कितना काल है वो नहीं सोचो, विनाश में कितना समय और है ये नहीं सोचो। जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में भी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत काल का अभ्यास नहीं तो अभी को तो अभी के बहुत काल के सुख, बहुत काल की श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से भी वंचित हो जाते। अभी जो बाबा इतना सुख दे रहा है, अति इंद्रिय सुख, बाबा का साथ इतना मिल रहा है, बाबा कहते उस श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से भी वंचित हो जाते हैं। इसीलिए क्या करना है, बहुत काल करना है। अगर किसी के भी बुद्धि में डेट का इंतजार हो तो इंतजार नहीं करना, इंतजाम करो। बहुत काल का इंतजाम करो, डेट को भी आपको ही लाना है। तो बाबा ने ये भी डेट का भी काम बाबा हमको देते हैं, ये डेट जो अंत की वो भी आपको ही लानी है ना, डेट को भी आपको ही लाना है। समय तो अभी भी एवर रेडी है, समय आएगा ये नहीं सोचो, समय तो अभी भी रेडी है, कल भी हो सकता है, लेकिन समय आपके लिए रुका हुआ है। 2024 हो गया, अभी तक वो समय नहीं आया क्योंकि बच्चे संपूर्ण नहीं बने हैं, तो समय आपके लिए रुका हुआ है। आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा अवश्य हटना ही है। आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा अवश्य हटना ही है। आपके रोकने से रुका हुआ है, एक्टर्स तैयारी नहीं है तो पर्दा कैसे खुले, आपके रोकने से रुका हुआ है। कहेंगे भाई रुको रुको अभी नहीं, अभी मैं तैयार नहीं हूं, अभी अभी नहीं, तो समय रुक जाता है। राज्य अधिकार तो तैयार, राज्य अधिकारी तो तैयार हो ना, तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए। जो राजा राज्य करेंगे वो तो तैयार तो हो, तो वो राज्य करेंगे क्या, तख्त को नहीं तो खाली रखेंगे क्या, तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए ना। क्या अकेला विश्व राजन तख्त पर बैठेगा, चलो श्री कृष्ण आ भी जाए, श्री नारायण आ भी जाए, परंतु प्रजा भी तो चाहिए और साथ साथ रॉयल फैमिली भी चाहिए, तो वो उनको भी तो पावन बनना है, संपूर्ण बनना है, तो तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए ना। क्या अकेला विश्व राजन तख्त पर बैठेगा, इससे शोभा होगी क्या। रॉयल फैमिली चाहिए, प्रजा चाहिए, सब चाहिए। सिर्फ विश्व राजन तख्त पर बैठ जाए और देखता रहे कहाँ गई मेरी रॉयल फैमिली, कहाँ गई मेरी प्रजा। इसलिए बाप दादा की एक ही शुभ आश है कि सब बच्चे चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, जो भी अपने को ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी, हरेक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बनो। कभी कभी के नहीं, पसंद है बहुत काल के अभ्यासी बनो, पसंद है। एक हाथ की ताली बजाओ, हाथ उठाओ भाई, पसंद है ना। बहुत काल की अनुभूति चाहिए, जो बाबा कहते हैं, हाँ ऐसे नहीं अब हुआ उस समय हुआ और विनाश हो गया, नहीं, ये संपूर्णता संपन्नता का अभ्यास इतना हो जो बहुत काल का हो। पीछे वाले होशियार है तो बाबा उस समय देख रहे थे, तो बाबा कहे कभी कभी के नहीं, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने, कभी कभी के नहीं। पसंद है तो एक हाथ की ताली बजाओ, पीछे वाले होशियार है, आगे वाले थोड़ा हाथ कम उठाया पर पीछे वालों ने बहुत जल्दी हाथ उठा लिया था, तो पीछे वाले होशियार है, अटेंशन से सुन रहे हैं। बाप दादा पीछे वालों को अपने आगे देख रहा है, बाबा हमेशा पीछे वालों पर बहुत ध्यान रहता था, तो आगे देख रहा है, आगे वाले तो है ही आगे, तो मेडिटेशन हॉल में भी बैठकर कई मुरली सुन रहे हैं, नीचे वाले बाप दादा के सिर के ताज होकर बैठे हैं। मधुबन वालों ने त्याग किया उस समय, यहाँ पर विदेशियों को और जो भारतवासी आए थे पार्टी में उनको दिया मौका। तो नीचे वाले बाप दादा के सिर के ताज होकर बैठे हैं, वो भी ताली बजा रहे हैं क्योंकि बाबा उनको याद कर रहे हैं। नीचे वालों को त्याग का भाग्य तो मिलना ही है, आपको सम्मुख बैठने का भाग्य है और उन्हों के त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। अच्छा, बाप दादा की एक आश सुनी, पसंद है ना ये आश कि बच्चे जल्दी संपन्न बने, संपूर्ण बने। अच्छा, अभी अगले वर्ष क्या देखेंगे बाप? ऐसे ही फिर भी हाथ उठाएंगे? हाथ भले उठाओ, दो दो उठाओ, परंतु मन का हाथ भी उठाओ। हाँ, तैयार होना है, वह रेडी बनना है, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो मन का हाथ भी उठाओ, दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं। ये है बाप की आश। क्या? एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं। नैनों में, मस्तक में वो चमकती हुई पवित्रता की मणि और नैनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के दो नैनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखना चाहते हैं। बोल वे कड़वे बोल, नेगेटिव बोल नहीं, बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखना चाहते हैं और भावना में सदा शुभ भावना और भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव। सदा आपके मस्तक से लाइट का, फरिश्तेपन का ताज दिखाई दे। दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। हाँ, फरिश्तेपन का, वो पवित्रता का ताज देखने में तो नहीं आएगा, पर अनुभव हो। ऐसे सजे सजाए मूरत देखना चाहते हैं और ऐसी मूरत ही श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। वो तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, भक्ति मार्ग वाले आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन बाप चैतन्य चित्र देखना चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा के साथी, सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम युगी अधिकार और भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले अति सेंसिबल आत्माएं सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले बाप की आशाओं के दीपक आत्माएं सदा स्वयं को होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले बाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सर्व विदेश व देश में दूर बैठे हुए भी सम्मुख अनुभव करने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। कई बच्चों को सेवा का उमंग है लेकिन वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है। सेवा सेवा सेवा, पर वैराग्य वृत्ति भी साथ में चाहिए, वो अटेंशन नहीं है। इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना अर्थात समय को शिक्षक बनाना। बच्चे बाप को भी दिलासा देते हैं। क्या दिलासा देते हैं बच्चे बाप को? बाबा फिक्र नहीं करो, समय पर ठीक हो जाएगा, कल कर लेंगे, हाँ कर लेंगे, समय पर ठीक हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप मास्टर रचयिता हो, समय तो आपकी रचना है, रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने ये शोभा नहीं देता। समय आपका शिक्षक बने बाबा के ये शोभा नहीं देता है, तो रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने ये शोभा नहीं देता। स्लोगन, बाप की पालना का रिटर्न है, क्या है रिटर्न? बाबा इतनी पालना कर रहे हैं उसका रिटर्न है स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। बाप की पालना का रिटर्न है स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। आज का व्यक्ति इशारा 7 तारीख। संस्कार मिलाने के लिए जहां मालिक हो चलना है वहां बालक नहीं बनना, और जहां बालक बनना है वहां मालिक नहीं बनना है। बालक अर्थात निर्संकल्प, जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना, इसको कहेंगे बालक। मालिक बन अपनी राय दो फिर बालक बन जाओ तो टकराव से बच जाएंगे। राय दी मालिक बने फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए। कई होते हैं ना, थोड़ा अभिमान है ना, मैंने तो इतनी अच्छी राय दी, मेरी राय मानी क्यों नहीं गई। ठीक है, आपने अपनी राय दी, वो आपने अपना काम किया, बाकी तो संगठन ने जो फाइनल किया वही स्वीकार होना चाहिए। इसको कहेंगे बालक बनना और मालिक बनना। अपने स्व पुरुषार्थ में भले मालिक, पर संगठन में बालक, यही बाबा कहते बालक और मालिक। ओम शांति।